ओम शांति। मुरली का टॉपिक है तीव्र पुरुषार्थी का निशानियां, या 22 जून 1971। हम 7 बात देखेंगे। तीव्र पुरुषार्थी, सबूत बच्चे, वफादार और फरमान बरदार, और संपूर्ण पवित्रता, और कर्म के विजय की मत, एंड और साक्षात्कार मुहूर्त, और स्मृति ही समर्थ। ये 7 बातें के बारे में हम देखेंगे। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात वो जो ऊपर उड़ाने वाले हैं, सदैव ऊपर ही रहते हैं, इसके कारण सदा बाप के साथ रहते हैं, और वो जो भी पुरुषार्थ करते हैं वो अभी अभी करेंगे। ऐसा नहीं मैं कुछ समय निकाल कर करूंगी, ऐसा वो लोग नहीं रहते हैं। और वो भी सबूत देने वाला सपूत बच्चे होंगे, इसके वजह से उनका निशानियां ऐसा होता है कि अच्छा सदा याद की यात्रा पर रहते हैं, और वो सरेंडर्ड है, और सदैव अपने को ट्रस्टी समझकर कार्य करेंगे, और श्रीमत के अनुसार वो भी जो भी डायरेक्शन मिल रहा है उसके मत से ही वो चलते हैं, ऐसे होते हैं। और सबूत बच्चों को बाबा ने वफादार और फरमान बरदार भी कहता है। वफादार माना स्वप्न या संकल्प में भी एक बाप के सिवाय, एक बाप के कर्तव्य के सिवाय, और एक बाप के ज्ञान के सिवाय, एक बाप की महिमा के सिवाय और कुछ नहीं रहते हैं। और फरमान बरदार वो है जिनके हर समय एक एक सेकेंड भी, एक एक थॉट भी फरमान पर ही चलते हैं, वो फरमान की बजाय वो नहीं चलते हैं। ये ऐसे है फरमान बरदार है। और बाबा ने कहा कि मुख्य फरमान हमको क्या मिला हुआ है, सदैव निरंतर याद में रहना, और कर्म मन वचन कर्मों में पवित्रता, यही है हमारा मुख्य फरमान है। जब हम मन वचन कर्मनों भी पवित्रता रहना है, संपूर्ण पवित्रता वो है हमारा संकल्प में भी अपवित्रता न रहे और बुद्धि में भी अशुद्धता न रहे, तब ही हम संपूर्ण पवित्रता कह सकते हैं। बाबा ने वैष्णव के एग्जाम्पल दिया है, उन लोग स्थूल का काना टच भी नहीं करते हैं, अगर टच करते हैं तो अपवित्रता मानते हैं। जैसे ही बाबा ने कहा बुद्धि में हमको अशुद्धता भी टच नहीं करना है, अगर टच होता है तो संपूर्ण पवित्रता नहीं है। बाबा ये भी कहा है कि अगर हम कुछ अकर्तव्य कार्य को देखेंगे तो उसका असर भी हमको हो जाता है, उसका हिसाब बन जाता है। हम ये समझना है कि हर सीन ड्रामा पर, हर कर्म जो भी हो रहा है ड्रामा पर, वो सब कल्याण है। इसका धारण हो जाएगा तो हमको कोई भी कर्तव्य अकर्तव्य ना होता है, हम ये सब देखेंगे ही नहीं। अगर और कर्म भी ऐसा करना है, कर्म योगी बनकर हम कर्म करना है। जैसे बाबा एग्जाम्पल दिया, ऊपर हमारा ऑफिस है, घर है, नीचे ऑफिस है, तो हमको ये स्मृति रहता है मेरा घर ऊपर है। ऐसे ही हम ये स्मृति में रहना है कि मैं ऊपर से नीचे उतरकर कार्य करने के लिए आई हूँ, हाँ घर से मैं आई हूँ, काम करती हूँ। और इस स्मृति हमको ओरिजिनल स्थिति और निजी स्थान को सदैव याद में रहने के हेल्प करते हैं। वैसे ही हम कर्म करना है, कर्म बाबा ने कहा कर्म में कभी कभी ही विजय का रिजल्ट दिखाई देता है, क्योंकि बाप बच्चे में जितना फेथ निश्चय बुद्धि है, जैसे ही उतना ही बच्चे खुद पर नहीं निश्चय करते हैं, इसलिए वो विजयी कभी कभी दिखाई देता है। इसलिए हम खुद पर भी, जैसे बाप के ऊपर पढ़ाई के ऊपर कितना निश्चय बुद्धि है, खुद पर ही उतना निश्चय बुद्धि होना चाहिए, तभी विजय पा सकते हैं हम। और वो जो तीव्र पुरुषार्थी है उनका हर कर्म में वो ज्ञान का स्वरूप दिखाई देता है, ऐसा होता है। वो जो फरमान मिलता है वो पॉइंट्स रूप के नहीं लेकिन स्वरूप में लाएंगे। स्वरूप में लाने से ही वो है साक्षात्कार मूरत बन जाते हैं। साक्षात्कार मूरत वैसे जैसे है कि भक्तों लोग वहां धूप जलाते हैं लेकिन वो यहाँ रहकर वो अनुभव करते हैं। वो पुकारते हैं वहां से लेकिन हमको ये समझता है कि वो सामने से ही वो पुकारते हैं, ऐसा समझते हैं तीव्र पुरुषार्थी। और स्मृति ही समर्थि है। बाबा ने कहा अनेक संकल्पों को समाप्त करके एक ही शुद्ध संकल्प में रहना है। ये जो भी स्मृति है वो हमको समर्थ देते हैं। ये स्मृति जैसे हम ऊपर से आई हूँ, मेरा निजी स्थिति ये है, मेरा स्थान वही है, ये स्मृति अगर सदैव रहेंगे तो वो स्थिति को बाबा कहते हैं शक्तिशाली और कर्म बंधनों से न्यारी प्यारी स्थिति, ऐसा बाबा ने कहा। ओम शांति। अच्छा, 7 पॉइंट है। तीव्र पुरुषार्थी उड़ाने वाला, बाप के साथ सदैव रहने वाला, अभी अभी करने वाला, कोई भी कमी कमजोरियां दिखाई दे इमीडिएट वो समाप्त कर देते हैं। स्मृति के शक्ति द्वारा वो समाप्त करते हैं। वो सबूत देने वाले सपूत बच्चे होंगे। वो वफादार और फरमान बरदार होंगे। वो संपूर्ण पवित्रता की धारणा होंगे और उनका हर कर्म में विजयी पाते हैं और वो साक्षात्कार मूर्त बनते हैं, सदैव स्मृति से समर्थ रहते हैं। ओम शांति।
ओम शांति। मुरली का सार है, सिंपल बनो सैंपल बनो। और तारीख है 19 जुलाई 1971। तो बाबा ने कई पॉइंट्स के द्वारा ये क्लियर किया कि सिंपल बनने से कैसे हम महान बन सकते हैं और विश्व के आगे सैंपल बन सकते हैं। तो सबसे पहले बाबा ने कहा कि दुनिया की कहावत है सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, लेकिन यहाँ पे बाबा ने कहा कि सिंप्लिसिटी विचारों में भी और सिंप्लिसिटी संबंधों में, सिंप्लिसिटी संपर्क में जितना हम लाएंगे उसके साथ साथ स्वच्छता भी। स्वच्छता होगी, सिंप्लिसिटी होगी, साधारणता होगी तो वो विश्व के आगे सैंपल बनेंगे, महान बनेंगे और आकर्षण मूर्त बनेंगे। तो बाबा ने कहा कि एग्जाम्पल के तौर में बाबा ने कहा जैसे बापू गांधी जी, तो वो अति साधारण रहे अपने लिविंग में, जीवन के अंदर, तो वो विश्व के आगे महान बने, लेकिन वो भी हद का था क्योंकि केवल साधारणता जीवन में नहीं परंतु साधारणता हम बच्चों को, बेहद के बाप के बच्चों को बेहद के कार्य में साधारणता हर प्रकार से लानी है, विचारों में, संबंध में, संपर्क में, तो हम विश्व के आगे एक सैंपल बनेंगे। दूसरा बाबा ने कहा कि जितनी सिंप्लिसिटी होगी, साधारणता होगी, उतना हम प्रॉब्लम से फ्री रहेंगे, ना हम स्वयं के लिए प्रॉब्लम बनेंगे ना दूसरों के लिए। और जहां प्रॉब्लम नहीं होगी वहां पर हमें दूसरों का सहयोग और स्नेह स्वतः प्राप्त होगा। तो बाबा कहते जिनके पास कॉम्प्लिकेशंस होती है विचारों में, साधारणता नहीं होती है, तो उनको दूसरों का ना स्नेह प्राप्त होता है ना सहयोग प्राप्त होता है। तीसरा बाबा ने सेवाधारियों के विषय में कहा कि सिंप्लिसिटी अर्थात हम जीवन के अंदर स्वयं को सेवाधारी समझकर चले। तो सेवाधारी जो होगा वो सदैव दो बातों का ध्यान रखेगा, एक तो सदैव खुद को जो भी कार्य करेगा वो सेवा प्रति कि मैं सेवा कर रहा हूं, दूसरा जिस भी स्थान पर रहेगा वो उसका सेवा स्थान है। तो बाबा ने कहा उसके लिए उसके जो स्मृति है उसकी स्मृति में परिवर्तन, कौन सा परिवर्तन, सदैव स्मृति में यह ध्यान रहेगा उसका नाम रूप गुण कर्तव्य अगर यथार्थ रीति से है तो वो निरंतर सेवाधारी बनकर चलता रहेगा। फोर्थ बाबा ने कहा कि जो सेवाधारी होगा वो स्वयं को निमित्त समझेगा, ट्रस्टी समझेगा और सदा यही समझेगा कि ये सब मेरी अमानत है, बाबा की अमानत है, और जहां अमानत है तो जिसकी अमानत है उसकी याद स्वतः आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें ये ध्यान रहे, बाबा कहते कि मैं आत्मा और ये शरीर बाबा की अमानत है, और सदैव अगर ये ध्यान रहा कि ये शरीर बाबा की अमानत है, तो आपकी स्थिति सदा ही रूहानियत वाली होगी। फिर बाबा ने कहा कि फिफ्थ, जिसकी स्थिति सदैव रूहानियत वाली होगी उसको प्रत्यक्ष फल सदा प्राप्त होगा। जो भी वो कार्य करेगा उसको उसी समय उसको उसका प्रत्यक्ष फल मिलेगा। सिक्स्थ, बाबा ने कहा कि ये जो जीवन है ये मर जीवा जीवन है। मर जीवा अर्थात इस जन्म में हम जो है वो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी रूप में है, तो हमारा पुराना जन्म से हम मर गए। तो ये स्मृति अगर हमें रहती है कि ये जीवन हमारा मर जीवा जन्म है, तो निरंतर याद हमारी बनी रहती है और हम स्वतः ही विश्व के आगे एक सैंपल रूप में उसके सामने आते हैं। लास्ट सेवेंथ पॉइंट, ये सब तो बाबा ने अटेंशन दिलाया कि किस प्रकार से हम सिंपल बने और सैंपल बने और सेवाधारी रूप में रहें, परंतु बाबा ने कहा जो सेवाधारी होते हैं उसके गुण क्या होंगे। तो उसके गुण होंगे, वो निर्माण चित होगा, वो नम्रता वाला होगा, वो त्याग मूर्त होगा, और त्याग ही उसको तपस्वी मूर्त बनाएगा। अब त्याग किस बात का, तो बाबा कहते हैं आपकी पूरी दिनचर्या में सबसे बड़ा जो विघ्न आता है वो आता है रौब का। और रौब किस बात का, अगर हम घर गृहस्थ में है तो रौब होता है मैं रचयिता हूँ। किसका, अपने बच्चों का रचयिता हूँ, इस घर का रचयिता हूँ, मेरा ये है, संबंध में संपर्क में रौब आता है। तो बाबा कहते जो सेवाधारी होगा उसको रौब का भी त्याग करना है, ये जो त्याग है यही उसको महान बनाएगा। तो इन बातों के द्वारा बाबा ने हमें ये स्पष्ट किया कि किस प्रकार से हम सिंपल बनकर एक सैंपल बनकर बाबा को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। बाबा ने सात बातों से सिंपल और सैंपल बनने की विधि को स्पष्ट किया। तो पहला है जहां सिंप्लिसिटी, किन बातों में सिंप्लिसिटी, बंसा में, संबंध में, संपर्क में। दूसरा, जहां सिंप्लिसिटी होगी वहां प्रॉब्लम नहीं होगी, और जहां सिंप्लिसिटी होगी वहां पर हमें स्नेह और सहयोग स्वतः प्राप्त होगा। थर्ड, जो सिंपल होगा वो सदा अपने आप को सेवाधारी समझेगा, या सेवाधारी जो होगा वो सदा अपने संकल्पों में सहज रहेगा। फोर्थ, जो सेवाधारी होगा उसको सदा स्मृति रहेगी अपने यथार्थ नाम रूप गुण कर्तव्य की। फिफ्थ, जो सेवाधारी होगा वो सदा यही समझेगा कि ये मेरा जीवन मर जीवा जीवन है, और ये शरीर भी बाबा की अमानत है, और मैं सेवा के निमित्त हूँ, तो उसकी स्थिति सदा रूहानियत वाली होगी। सिक्स्थ, उसके अंदर त्याग होगा, वो निर्माण चित्त होगा, वो नम्र चित्त होगा, और तपस्वी मूर्त होगा, क्योंकि त्याग उसको तपस्वी मूर्त बना देगा। सातवां, उसमें किसी भी प्रकार का रौब नहीं होगा, अर्थात मेरापन नहीं होगा, वो संबंध संपर्क में रौब रहित होगा, मनसा में भी रौब रहित होगा। ये त्याग सबसे बड़ा त्याग बाबा ने कहा, और यही त्याग उसको सेवाधारी रूप में प्रत्यक्ष करेगा, और इसी प्रकार से वो विश्व के आगे सैंपल बनेगा। ओम शांति। सोनिका बहन, ORC गुड़गांव।
ओम शांति। मुरली का टॉपिक है बुद्धि का अलौकिक ड्रिल, 18 जून 1971। तो बाबा ने कहा, बच्चे तुम रूहानी वॉरियर्स, जैसे योद्धा युद्ध के मैदान में कोई भी डायरेक्शन प्रमाण चलते हैं, तो हमें भी सेकंड के भी कम समय में अपनी स्थिति को स्थित करना है। सेकेंड पॉइंट, मास्टर सर्वशक्तिवान, तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो और मास्टर नॉलेजफुल भी हो। थर्ड पॉइंट, मास्टर बाबा ने टाइटल दिया, तुम हो मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी। तो बुद्धि का लगन एक ही बाप से लगा हुआ रहे, और जब चाहे जहां चाहे ऑथोरिटी प्रमाण लगा सकते हैं, इसी को बोलते हैं ईश्वरीय ऑथोरिटी। और जो इसी अभ्यास को करते हैं उसको कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर नॉलेजफुल, जैसे कर्म, जैसे स्थूल कर्मेंद्रिय हम चलाते हैं वैसे ही करना है। नेक्स्ट बाबा ने कहा नॉलेजफुल का अर्थ क्या है। नॉलेजफुल का अर्थ है जिसको फुल नॉलेज है क्या करना, अभी क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किस में प्रॉफिट है किस में लॉस है। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, जन्मते ही एक शब्द हमें सिखाया जाता है, वो है बाप को याद करो। तो ये लौकिक और अलौकिक जन्म में दोनों ही सेम अर्थ है। ड्रिल का अभ्यास, बाबा ने कहा जितना ड्रिल का अभ्यास करोगे, पहले पहले शुरुआत में ये थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन जितना ड्रिल का अभ्यास करोगे उतना ड्रिल के बिना रह नहीं पाओगे। और सेवेंथ पॉइंट, आवाज में आना। बाबा ने पूछा आवाज में, आवाज से परे जाना पसंद लगता है या आवाज में रहना पसंद लगता है। फिर बाबा ने ड्रिल सिखाया कि अभी अभी परमधाम निवासी बन जाओ, देह के साथ देह के सारे संबंधों को तोड़ अशरीरी बन जाओ, फिर परमधाम निवासी से अभी अभी अव्यक्तवासी बन जाओ, फिर कार्य व्यवहार में आते अपनी स्थिति में स्थित रहकर कार्य करना। तो रिवाइज वॉरियर, रूहानी वॉरियर्स, बाबा कह रहे हैं रूहानी वॉरियर्स। सेकेंड है मास्टर सर्वशक्तिवान और मास्टर नॉलेजफुल। थर्ड है मास्टर नॉलेज, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी। फोर्थ है मास्टर नॉलेजफुल का अर्थ। क्या करना है क्या नहीं करना है, फर्स्ट और लास्ट पार्ट क्या है। फिफ्थ है ड्रिल की प्रैक्टिस। हाँ, अगर अगर ड्रिल नहीं करोगे तो राज्य भाग्य में नहीं जा सकते। ओम शांति।
ओम शांति। 26-70 कामधेनु अर्थात, कामधेनु का अर्थ ही है सबकी मनोकामनाएं पूरी करने वाले। साक्षात्कार मुहूर्त जो होंगे वो, उसके सामने कोई भी व्यक्ति किसी भी कामना से आता है तो उसको पूरी कर सकते। कामना उसको पूरी कर सकते जो स्वयं कामनाएं पूरी होंगी, वही दूसरों की कामनाएं पूरी कर सकता है। तीसरा, जो प्राप्ति स्वरूप होगा, स्वयं प्राप्ति स्वरूप होगा, दूसरों को प्राप्तियां करा सकेंगे। जो स्वयं इच्छा मात्रम अविद्या होगा, वही दूसरों की इच्छाएं पूरी कर सकेंगे। जो स्वयं संपन्न होगा, दूसरों को भी संपन्न करा सकेंगे। जो दाता होंगे, दाता देने वाला दाता होंगे, महादानी बन सकेंगे। महादानी, महाज्ञानी ही महादानी का परख है। ऐसे महादाता तब बन सकेंगे सामने, अपने सामने जो शेयर करने की आदत होगा वो दूसरों के बुद्धियोग द्वारा शेयर कराएंगे। उसका एग्जाम्पल कौन है? नहीं, यहाँ डॉक्टर साहब बैठा है, सबका बुद्धि को ना खुद शांति से बैठ सकता है ना दूसरों को बैठने देता है। मना अच्छी बात है, ऐसा नहीं है ये कोई, हाँ, क्योंकि ये एग्जाम्पल है बड़ी दादी का। बड़ी दादी कभी भी ना खुद बैठती थी दूसरों को बैठने देते। खुद राम श्लोक भाई का अनुभव सुनाता था कई बार, ये दादी आज फ्री है तो चलो उधर चलेंगे, या क्लास का कुछ ना कुछ नवीनता रमणीकता के रूप से क्लास कराती थी। इसी तरह अब क्या बोल रहा था, शेयर करा देंगे। शेयर जो शेयर करने की आदत होता है उनको, वो दूसरों की बुद्धियों द्वारा शेयर करा देंगे। जैसा अभी साकार बाबा था, साकार बाबा के सामने कोई भी जिस भावना से आता था उस भावना से उनको साक्षात्कार होता था या अनुभव होता था। जैसा कोई विरोधी भी आता था तो विरोधी के बजाय, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, सरदार जी मारने के लक्ष्य से आया था, वो क्या हुआ, उसको गुरु नानक का साक्षात्कार हुआ। इसी तरह ऐसा हम दैवी मूरत, साक्षात्कार मूरत तब बन सकेंगे जब अव्यक्त आकृति रूपधारी होंगे। आकृति रूपधारी जो होगा वो उनको क्या होगा, सूक्ष्म वतन में उसका सूक्ष्म शरीर ही दिखाई पड़ेगा, अर्थात लाइट का शरीर ही दिखाई पड़ेगा, लाइट ही लाइट दिखाई पड़ेगा, तब लाइट का साक्षात्कार होगा। इसी तरह इस मुरली का स्वमान है, मैं कामधेनु सब आत्माओं को संतुष्ट करने वाली। इस मुरली का जो चिंतन है, महादानी और महाज्ञानी का यथार्थ परक क्या है, उसकी विधि क्या है, और उसका पहला पॉइंट था कामधेनु का अर्थ है सबकी मनोकामनाएं पूरी करने वाले। दूसरा है तीसरा चौथा में आएगा, साक्षात्कार मूरत। साक्षात्कार मूरत वो बनेंगे जो जिसकी कोई भी उसके सामने कोई भी कामना से आएंगे उनको कामनाएं पूरी कर सको। फिर उसके बाद होगा कामनाएं उसकी पूरी होगी जो स्वयं कामना पूर्ण हो चुके होंगे। और तीसरी है चौथी प्राप्ति स्वरूप, जो प्राप्त स्वयं प्राप्ति स्वरूप संपन्न होगा वो दूसरों को प्राप्ति करा सकेंगे। महादानी और महादानी वो है जो महाज्ञानी का परक है महादानी। इसी तरह जो शेयर कर सकेंगे वो दूसरों को बुद्धियोग द्वारा शेयर करा सकेंगे। जो साकार बाबा का फिर दृष्टांत दिया है, वहां साकार बाबा के सामने जो भी आते थे वो जो जिस भावना से आते थे वो भावना का उसी अनुसार साक्षात्कार होता था। फिर लास्ट में है जो अव्यक्त आकृति रूपधारी होंगे तो वो उनको वो शरीर नहीं दिखाई पड़ेगा उस समय, उसका सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म शरीर दिखाई पड़ेगी। उससे वो मस्तक में लाइट नहीं, पूरा शरीर लाइट ही लाइट दिखाई पड़ेगी। जब लाइट देखेंगे, लाइट का अनुभव करेंगे, तब खुद लाइट बन जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। मैं आत्मा इस प्रकृति के बुद्धि के यंत्र द्वारा सूक्ष्म वतन में बाबा के पास पहुंचा। बाबा अपना वरदानी हस्त मुझ मस्तक पर रखा, रखते ही मैं लाइट रूप एकदम इस अलौकिक अनुभूति में खो गया। मैं महसूस कर रहा था मेरे शरीर से लाइट की रेसे निकल रहे, पूरा विश्व में व्याप्त हो रहे। उस अनुभव को सब लोग ये महसूस कर रहे थे, धन्य हो गए, हमारे जीवन धन्य हो गए। तब सबके मस्तक में लाइट ही लाइट चमक रहे थे। बाबा ने कहा, बच्चे ये अभ्यास बार बार करने से सबको लाइट का साक्षात्कार होगा। ओम शांति।
ओम शांति। मुरली का डेट है 16 जनवरी 1975। तो उसमें सबसे पहले बाबा ने बोला कि बाबा ने दो प्रकार के बच्चे देखे, एक देखा जो समीप और एक देखा नैनों में समाये हुए। समीप अर्थात जो एक की लगन में मगन, जिसकी दृष्टि वृत्ति और स्मृति एक समान। और बाबा ने नए साल पे बोला कि इस वर्ष कौन सा पुरुषार्थ करना है, तो बाबा ने बोला कि सबको यही सुनाना कि घर चलना है, वापस साथ लेके चलना है। ज्वाला रूप, मुरली का टॉपिक था ज्वाला रूप अवस्था। तो उस पर बाबा ने बोला कि ज्वाला रूप अवस्था साक्षी और सहज किनकी होगी, तो बाबा ने बताया जिनका एक बाप दूसरा ना कोई होगा। बाबा ने बताया अल्पकाल की अल्प आत्माएं विनाश के भवके के सहयोगी होंगे, और जो श्रेष्ठ संकल्प के आत्माएं होंगे वो विनाश। बाबा ने बोला कि जो सहज जो साक्षी होंगे वो सहज ही और बाप समान होंगे, और वही ज्वाला स्वरूप होंगे, और वही ही विनाश को देखने के स्पष्ट होंगे। बाबा ने बोला था जो आधार मूर्त होंगे वो कभी हलचल में नहीं आएंगे, और बाबा ने बोला था जो ज्वाला स्वरूप होंगे वो प्रकृति जीत होंगे, और बाबा ने बोला था वो सदा बाप के नैनों में समाये हुए होंगे। जो वो साक्षी होंगे वो सहज होंगे, वो सदा एक बाप को याद करेंगे, और जो समीप आत्माएं होंगे वो नैनों में समाये हुए होंगे, और जो अल्पकाल की आत्माएं होंगी वो विनाश के भवके के निमित्त होंगे, और अल्पकाल के नए वर्ष पे बाबा ने बोला कि इस वर्ष कौन सा पुरुषार्थ करना है, तो सभी को घर जाना और सभी को साथ ले जाना। और एक बाबा ने बोला था निराकारी दुनिया में जाने के लिए कैसा भेष चाहिए, निराकारी ही भेष चाहिए। बाबा ने बोला कि जो आधार मूर्त होंगे वो कभी हलचल में नहीं, कभी जोश में, कभी होश में ऐसे नहीं आएंगे, वो जो साक्षी होंगे वो बाप समान होंगे, उन्हीं में ज्वाला स्वरूप दिखाई देगा, और वही विनाश के सीन स्पष्ट देख सकेंगे। ओम शांति।
2272 की मुरली है, प्रीत बुद्धि की निशानियां, और सभी अव्यक्त रूप में स्थित हो, अव्यक्त मिलन अव्यक्त स्थिति में रहने से ही कर सकते हैं। बाबा ऐसे पूछ रहे, अव्यक्त स्थिति में हो अव्यक्त स्थिति में रहने से ही बाबा का मिलन मना सकते हैं। अव्यक्त स्थिति में रहने वालों को सदा हर संकल्प और हर कर्म अलौकिक होता है, वो कमल पुष्प समान न्यारा और प्यारा रहता है, और ऐसे अलौकिक स्थिति में सदा रहने वालों को कहा जाता है अल्लाह लोग कहा जाता है उन लोगों को। ऐसे को ही प्रीत बुद्धि कहा जाता है। इसलिए आप लोगों का मुख्य स्लोगन है, आप लोग मुख्य स्लोगन बताते हो, विनाश काले विपरीत बुद्धि और विजय, प्रीत बुद्धि वालों का विजयंती और विपरीत बुद्धि वालों का विनाशयन्ति, ये आपका स्लोगन है, हम हमारा भी है, बाबा ने कहा आपका ऐसे। प्रीत एक प्रीतम के साथ सदा लगी हुई हो, एक के साथ सदा प्रीत है, किसी व्यक्ति का वैभवों के साथ प्रीत झूठी नहीं सकते। एक के साथ प्रीत है तो दूसरे व्यक्ति और वैभवों के साथ प्रीत झूट नहीं सकते। बाप सदा सम्मुख का अनुभव करेंगे, बाप का सदा सम्मुख का अनुभव करेंगे, उसको ही कहते हैं प्रीत बुद्धि। प्रीत बुद्धि वाले सदैव बाप के सम्मुख रहने के कारण उनके मुख से सदा, दिल से सदा यही बोल निकलता है, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से बोलूं, तुम्ही से सुनूं, तुम्ही से सर्व संबंध निभाऊं, तुम्ही से ही सर्व प्राप्ति करूं। उनके नयन मुखड़ा, उनके नयन और मुखड़ा ना बोलते हुए भी बोलते हैं। और ऐसे बुद्धि द्वारा बाप के सामने रहने का अभ्यास करो, जैसे सूर्य के किरणें अपने आप ही अपने ऊपर पड़ते अवश्य आती है, इसी तरह अंतर्मुखी रहने से जलक और अंतर्मुखी का जलक और संगम युग का भविष्य का प्रालब्ध का फलक रहती है, और हर्षित भी रहते, इसको ही कहते हैं प्रीत बुद्धि। और सदा याद रहे इस तन का भी विनाश हो, सदा याद रहे इस तन का भी कभी भी विनाश हो सकता है, विनाश काल स्मृति रहे तो प्रीत बुद्धि स्वतः बन जाते हैं। विनाश काल में अज्ञानी लोग भी बाप को याद करते हैं, प्रयत्न जरूर करते हैं बाप को याद करने का, परिचय नहीं प्रीत बुद्धि नहीं है तो प्रीत बुद्धि नहीं हो पाते वो लोग। बाबा कहते अपने, इसलिए बाबा कहते हैं परिचय नहीं तो भी वो परिचय नहीं है इसलिए उसको प्रीत बुद्धि नहीं हो पाते। आज से स्मृति में रहे, अंतिम जन्म की अंतिम घड़ी है। बाबा कहते यह याद रहने से कोई याद नहीं आते, अंतिम जन्म की अंतिम घड़ी है, यह याद रहने से कोई भी याद नहीं आते, ऐसे प्रीत बुद्धि विजयी बन सकते। प्रीत बुद्धि नहीं बने अर्थात कहाँ न कहाँ प्रीत जुटी हुई है, किसी से प्रीत जुटी है। प्रीत बुद्धि नहीं बने तो कहाँ न कहाँ किसी से प्रीत जुटी है। बाबा कहते हैं वर्तमान समय जो भी कर्म करते हो समझो प्रैक्टिकल पेपर दे रहे हो। अभी थोड़े समय में अनुभव करेंगे, कोई भी विकर्म करे तो समझो सजाओं का अनुभव सूक्ष्म रीति से होगा। एक सेकेंड की सजा अनेक जन्मों का अनुभव होंगे, फिर उन सजाओं से छूटकर अपनी स्थिति में स्टेज पर आने के लिए बहुत मेहनत लगेगी। अब परीक्षा का समय चल रहा है, बाबा कहते उल्लाना नहीं देना, क्या मालूम था ऐसी हमको प्रलब्ध मिलेगी, पेपर आएंगे, इसलिए सावधान रहो। इन बाबा कहते एक का सौगुणा दंड, इसी तरह एक का सौगुणा लाभ है, इसी तरह एक का सौगुणा दंड भी है, इसलिए प्रीत बुद्धि बनकर रहो। सात पॉइंट था, बाबा कहते अलौकिक स्थिति में रहने वाले ही बाबा का मिलन मना सकते हैं, और प्रीत बुद्धि वाले हैं न्यारा और प्यारा कमल फूल समान रह सकते हैं, और प्रीत बुद्धि वाले ही विजयी हो सकते हैं ना, विनाश काले उनका प्रीत बुद्धि है तो वो विजयी बन सकते हैं, और उनका सदा उनके बुद्धि सदा रहते हैं, विनाश कभी भी हो सकता है मना, विनाश हो सकता है मना, उससे वो प्रीत बुद्धि बाबा के साथ सदा रहते हैं, और अंतर्मुखी रहते हैं वो लोग, अंतर्मुखी रहते हैं। कौन लोग? प्रीत बुद्धि वाले, प्रीत बुद्धि वाले हम लोग, हाँ हम, मैं। बाबा कहते हैं और अंतिम हर घड़ी अंतिम घड़ी समझ लेते, हर जन्म नहीं हर घड़ी अंतिम समझ लेते हैं, ऐसे ही ये पॉइंट। बाबा कहते हैं उन वो समझ लेते हम पेपर में हैं, सदा पेपर पेपर दे रहे हैं, हम सब लोग अभी पेपर दे रहे हैं। लास्ट पॉइंट बाबा कहते हैं हर घड़ी अंतिम घड़ी हो गया, उल्हाना नहीं देते, हमको पता ही नहीं था, सदा मालूम रहते है अभी अंतिम समय है। अच्छा, थैंक यू। ओम शांति।
ओम शांति। डेट है 19th July 69 और टाइटल है बिकम जीरो एंड हीरो। तो उसमें बाबा ने जीरो के लिए बोला है कि जीरो माना सीड है और पॉइंट है, और नथिंग इज एसोसिएटेड विद जीरो, तो वो एक अकेले हैं। और हीरो माना एक्टर है जो बाबा का सबसे प्यारा है, और हीरो माना डायमंड है, तो हमें चेक करना है कि हमारी लाइफ हमें कितनी वैल्यूएबल लगती है। और फिर बाबा ने दूसरी पॉइंट बताई जिसके बारे में चेकिंग है। तो पहला पॉइंट है कि यह शुरुआत है मुरली की, कि बाबा पूछ रहे थे कि इन विच एस्पेक्ट डू यू फील देर इज अ लैक ऑफ पावर, एंड इन विच एस्पेक्ट स्पेशल, सॉरी, इन विच स्पेशल एस्पेक्ट डू यू विश टू बी मेड पावरफुल। तो वो दो बातें हमको चेक करनी है अंदर। तीसरी बात थी कि हाउ हैव यू एवर नोटेड हाउ लॉन्ग यूव मेंटेन द विजन एंड अवेयरनेस ऑफ सोल कॉन्शियसनेस। तो वो पूरे दिन में हमको चेक करना है। अच्छा, पूरे दिन में हमको ये चेक करना है कि हमारी विजन, दृष्टिकोण और अवेयरनेस, स्मृति, सोल कॉन्शियसनेस, आत्माभिमानी पूरे दिन में रहती है। और चौथी पॉइंट है कि बाबा कहते हैं कभी कभी हम करेज लूज करते हैं छोटी छोटी बातों में, तो वो हमें चेक करना है कि पूरे दिन में हम कैसे करते हैं, क्योंकि जहाँ पे करेज है वहाँ पे बाबा की मदद मिलती रहती है। और पांचवी पॉइंट है जिसमें बाबा बोल रहे हैं, नहीं छठी है, पांचवी थी करेज, अच्छा ये चौथी थी, अच्छा तो पांचवी पॉइंट है कि हमको ये फर्स्ट लेसन पक्का करना है कि जो फर्स्ट लेसन है आत्म अभिमानी, जिससे हम मिलते हैं, जिससे बात करते हैं, तो वही हमारे अंदर रहे कि हम आत्मा को देख के आत्मा से बात करते हैं। और छठी पॉइंट है कि अगर हम ये दो बातें याद रखें, जीरो और हीरो, तो हमारे में वो सारी वर्च्यूज आ जाती हैं और हम बाप समान बन जाते हैं। और सातवीं पॉइंट है कि बाबा हमको बोल रहे हैं कि आप शिव शक्ति हो, तो शक्ति हमारे में है या सिर्फ शक्ति स्वरूप बनने की अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये सात पूरी हो गई। और लास्ट में हमने एक बात सुनी है जो मुरली में नहीं थी लेकिन हमको बहुत अच्छी लगी और मुरली से रिलेटेड है, वो हिंदी में है, उसका ट्रांसलेशन इतना इंग्लिश में अच्छा नहीं होगा इसलिए मैं ट्राई करती हूँ। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ पाना चाहते हैं, के दाना खाक में मिलाकर हे गुले गुलजार बनता है। अच्छा, पहला है जो मुरली के टाइटल से है जीरो और हीरो। जीरो माना पॉइंट है और हीरो, हाँ, जीरो माना पॉइंट है और जीरो माना ऑल्सो कोई भी चीज एसोसिएट नहीं है, और हीरो माना डायमंड है जो हमारी लाइफ कितनी वैल्यूएबल है। हिंदी का मतलब पता नहीं है, नथिंग इज एसोसिएटेड विथ जीरो माना नो पास्ट संस्कार, और उसमें एक लाइन जुड़ी हुई है कि पास्ट संस्कार, हाँ, नहीं है एसोसिएट, नो पास्ट संस्कार। और दूसरी बात है जो हीरो की है, वो एक्टर है और बाबा का सबसे प्यारा है, और हीरो माना ऑल्सो डायमंड जो कि वैल्यूबल है, हमको चेक करना है कि हमारी लाइफ कितनी वैल्यूबल है। और फिर दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है जो चेकिंग करना है, हाँ, कि हमारे कौन सी एस्पेक्ट हमारे पावर हमारी कम है और किस में हम चाहते हैं कि हमारी पावर बढ़े, और वो दो बातें सर्विस के रिलेटेड थी। और तीसरी है कि हमें पूरा दिन में चेक करना है कि हमारी विजन माने दृष्टि और स्मृति आत्मी स्वरूप कितना है। और पांचवी पॉइंट है कि करेज की है। बाबा पूछते हैं कि कभी कभी हम छोटी छोटी बातों में करेज को कम कर देते हैं, तो वो हमें बढ़ानी है, क्योंकि जहाँ पे करेज होगा वहाँ बाबा की मदद मिलेगी। और सातवीं पॉइंट है, हाँ, जो अगर हम ये दो बातें जीरो और हीरो को जीवन में लाएंगे तो हमारे में वो कंप्लीट वर्च्यूज आ जाएंगे जो कि बाप के है, तो बाप समान बन जाएंगे। शांति। सिस्टर मीना फ्रॉम ऑक्सफर्ड।